नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। ध्यान का तेज। दिवा तपति आदिच्यो रत्तिमा भाति चंदिमा सन्नद्धो खत्तियो तपति झाई तपति ब्राह्मणो अथ सब महो रत्तिम बुद्धो तपति तेजसा। दिन में सूर्य तपते हैं, रात में चंद्रमा भासते हैं, कवच पहन क्षत्रिय चमकता है, ध्यान लगाता हुआ ब्राह्मण चमकता है, तथा अपने तेज से सारे रात दिन बुद्ध चमकते हैं। धम्मपद गाथा 387। बुद्ध ने यह गाथा तब सुनाई जब वे माँ विशाखा द्वारा दिए गए विहार में रह रहे थे। स्थविर आनंद ने जो देखा था यह उसकी पुष्टि में कही गई थी। एक विशेष पर्व के दिन कौशल के राजा पसेनदी अपने कवच आदि सभी राजसी वेशभूषा में माला एवं इत्र धारण कर विहार पहुंचे। उस समय स्थविर कालुदयी भिक्षु संघ की परिधि पर गहरे ध्यान में प्रवेश कर बैठे हुए थे। उनका स्वर्णिम शरीर देखने योग्य था। उसी समय चंद्रमा प्रकट हुए एवं सूर्य अस्त। आनंद थेर ने अस्त होते हुए सूर्य की कांति को तथा उदय होते हुए चंद्रमा की कांति को देखा। तब उन्होंने राजा के शरीर की कांति को, ध्यान मग्न स्थविर की कांति को तथा बुद्ध की कांति को देखा। उन सभी में बुद्ध की ही कांति सर्वोत्तम थी। आदरणीय आनंद ने बुद्ध का अभिनंदन किया तथा बोले, भंते, आज जब मैंने इन सभी निकायों की कांति को निहारा तो केवल आपकी कांति मुझे संतोषजनक लगी, क्योंकि आपकी कांति इन सभी की कांति में सर्वोत्तम है। तो बुद्ध ने कहा, आनंद, सूर्य दिन में, चंद्रमा रात्रि में तथा राजा अपने कवच आदि आभूषण में ज्योतिर्मय होता है। अरहत तब ज्योतिर्मय होते हैं जब वे मानव समाज को पीछे छोड़ ध्यानमग्न हो जाते हैं, किंतु बुद्ध दिन एवं रात्रि दोनों में ज्योतिर्मय होते हैं। वे पांच गुनी कांति के साथ चमकते हैं, तथा उन्होंने वह गाथा कही जिससे हमने प्रारंभ किया है। ग्वाला नंद की कथा। दिशो दिशम यमतम कैरा वेरी वापन वेरिनम मिच्छा पणिहितम चित्तम पापियो नम ततो करे। शत्रु शत्रु की अथवा बैरी बैरी की जितनी हानि करता है कुमार्ग पर लगा हुआ चित्त उससे कहीं अधिक हानि करता है। धम्मपद गाथा 42। बुद्ध ने यह गाथा तब सुनाई जब वे भिक्षुओं को नंद की मृत्यु के विषय में समझा रहे थे। नंद गृहस्थ शिष्य अनाथ पिंडिक के मवेशियों की देखभाल करता था। नंद ने अपने घर पर आने के लिए बुद्ध को आमंत्रित किया, किंतु बुद्ध जानते थे कि अभी वह तैयार नहीं था। अतः उन्होंने उसके विवेक के परिपक्व होने की प्रतीक्षा की। अंत में जब उन्हें लगा कि अब नंद लाभान्वित हो सकता है तो वे उसके पास गए तथा उसे जागृति के पहले चरण में स्थापित किया। बुद्ध जब वापस आने लगे तो नंद उनके पीछे पीछे छोड़ने आया, और कुछ देर के बाद बुद्ध ने उससे विदा ली। फिर अपने घर लौटते समय मार्ग में ही नंद एक शिकारी के तीर से मारा गया। बुद्ध के साथ जो भिक्षु थे उन्होंने कहा, शास्ता, यदि आप नहीं आए होते तो वह मारा नहीं गया होता। तो बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, चाहे मैं आता या नहीं उसके लिए मृत्यु से बचना संभव नहीं था। भले ही वह चारों दिशाओं तथा चारों कोणों में से किसी भी ओर जाता, नंद का निधन निसंदेह पूर्व जन्म में उसके कुछ बुरे कर्मों का परिणाम था। यह तो अनुचित रूप से निर्देशित मन है जिसका वर्णन इस गाथा में किया गया है, जो कि अनुचित कर्म के लिए उत्तरदायी है। जिसका परिणाम अत्यंत हानिकारक होता है। मन 10 प्रकार की बुराइयों की ओर उन्मुख हो सकता है, जिनमें शिक्षा पदों को भंग करना तथा 3 दूषित मूल सम्मिलित हैं। 3 दूषित मूल हैं राग, द्वेष एवं मोह, यहाँ मिथ्या विश्वासों के अर्थ में। अनुचित दिशा में निर्देशित मन जिन शिक्षा पदों को भंग करने के लिए उन्मुख होता है, उनमें हत्या, चोरी, यौन दुर्व्यवहार, झूठ, निंदा, कठोर वाणी तथा व्यर्थ भाषण सम्मिलित हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वाणी संबंधित शिक्षा पद के और प्रतिभाग करना संभव है, क्योंकि झूठ बोलने के अतिरिक्त अन्य बातें भी अनुचित वाणी में सम्मिलित हैं। सही समझ। पहले कुछ दिनों में जब हम आनापान का अभ्यास कर रहे थे, तब हमने अष्टांगिक आर्य मार्ग के उन 6 भागों की चर्चा की जो आनापान पर लागू होते हैं। अब जबकि हम पूरी तरह विपस्सना के मार्ग पर हैं, तो 2 अंतिम चरणों अर्थात सम्यक दृष्टि, पाली में सम्मादिट्ठि, तथा सम्यक संकल्प, पाली में सम्मा संकप्पो के विषय में विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। यह चर्चा सयाजी उबाखी के आचार्य के आचार्य आदरणीय लेदी सयादो द्वारा रचित आर्य मार्ग के घटकों की नियम पुस्तिका दी मैनुअल ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द नोबल पाथ पर आधारित होगी। सही समझ या समुचित दृष्टि को 3 पहलुओं में विभाजित किया जा सकता है। 1, सही समझ कि केवल 2 चीजें ही एक अस्तित्व से दूसरे अस्तित्व में प्राणियों का अनुसरण कर सकती हैं, कुशल एवं अकुशल कर्म, कम्मा सकत सम्मा दिट्ठि। 2, अस्तित्व चक्र साभिप्राय कर्मों के परिणाम एवं मुक्ति से संबंधित 10 प्रकार के विषयों की सही समझ। 3, 4 आर सत्यों की सही समझ। इस संसार में भवन, वाहन, स्वर्ण तथा रजत जैसी संपत्तियां विद्यमान हैं। इस प्रकार की वस्तुएं हमारे वर्तमान अस्तित्व में हमारी हैं। मृत्यु के पश्चात वह संपत्ति हमारे साथ नहीं जा सकती। इस प्रकार की संपत्ति उधार संपत्ति की तरह है। केवल मानसिक, मौखिक और शारीरिक इच्छा शक्तिपूर्ण कर्म ही इस जीवन में व भविष्य के जन्मों में हमारा साथ दे सकते हैं। अग्नि, जल, शासक, चोर या शत्रुओं द्वारा इच्छा शक्तिपूर्ण कर्मों के नष्ट होने की संभावना नहीं है। सभी जीवित प्राणी जागते समय सदैव 3 प्रकार के अर्थात शारीरिक, मौखिक या मानसिक कर्म निष्पादित करते हैं। उनके सभी कार्य इन्हीं कर्मों द्वारा होते हैं। जब वे सो रहे होते हैं तो ये कर्म निष्क्रिय हो जाते हैं। जब वे मर जाते हैं तो जहाँ तक कि उस शरीर का संबंध है, ये कर्म बंद हो जाते हैं। ये 3 प्रकार के कर्म या तो अच्छे होते हैं या बुरे, तथा वे अपना परिणाम या तो इस जीवन में या भविष्य के जीवन में दे सकते हैं। धम्म पद की दूसरी गाथा को उद्धृत करते समय हमने 10 प्रकार के अनैतिक आचरण के विषय में बताया था। हमें भौतिक वस्तुओं को उपलब्ध करने में, जीविका अर्जित करने में तथा ज्ञान प्राप्त करने में अनुचित कर्मों से बचना चाहिए। इससे इस जीवन में कुशल कर्म होंगे। किंतु यदि हमारा उद्देश्य भविष्य में किसी अच्छे लोक में जन्म लेना है, तो केवल अनैतिक आचरण से मुक्त होना पर्याप्त नहीं होगा। हमें कुछ और भी करना होगा। हमें अच्छे कर्म भी करने होंगे, जैसे दान तथा विशेष दिनों पर 8 शिक्षा पदों का पालन। हमें ध्यान का अभ्यास करना होगा तथा त्रिरत्न अर्थात बुद्ध, धम्म एवं संघ को नमन। हम देख सकते हैं कि भूमि पर, जल में तथा आकाश में सभी प्रकार के प्राणियों द्वारा कैसे मानसिक, मौखिक तथा शारीरिक कर्म किए जा रहे हैं। स्वयं अपनी आँखों से यह देखने के बाद हम यह भी समझ सकते हैं कि ये प्राणी अपने अतीत के अनंत विश्व चक्रों के अस्तित्व से इसी प्रकार कर्म करते आए हैं तथा वे भविष्य में भी इसी प्रकार का आचरण करते रहेंगे। और चारों दिशाओं में अनंत ब्रह्मांड हैं जिनमें भूमि, जल एवं आकाश में जीव इन तीन प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। अतः हम अनुमान लगा सकते हैं कि कुशल कर्मों से अच्छे परिणाम तथा अकुशल कर्मों से विभिन्न प्रकार के दुख फलित होते हैं। आपके पास कुछ भी न हो, एक सिक्का भी नहीं, फिर भी आप सुखी हो सकते हैं यदि आपके पास ज्ञान तथा बुद्धि रूपी मानसिक कर्म हो। जो लोग इस जीवन में सांसारिक लाभ जैसे संपत्ति, अधिकारी पद तथा सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, वे यदि यत्न करें तथा शिक्षा एवं ज्ञान अर्जित करें तो वे अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। ये चीजें केवल चाहने या प्रार्थना करने से नहीं आ जाती। यदि ऐसा संभव होता तो किसी को भी कला एवं विज्ञान सीखने अथवा कृषि इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस प्रकार इस संसार में मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने प्रयासों के माध्यम से पाता है, उसी प्रकार जो भी कुशल कर्म, जिन्हें हम पहले ही बता चुके हैं, करता है तो भावी जन्म में वह अच्छे अस्तित्व में पैदा होगा। अतः बुद्ध ने कहा कि कर्म ही हमारी संपदा है, सब्बे सत्ता कम्मस्सका। जो कर्म अर्थात इच्छा शक्ति पूर्ण कार्य हम करते हैं उनकी तुलना बीज से की जा सकती है। अतीत में किसी पौधे से बीज उत्पन्न हुआ, बीज में वह क्षमता या संभावनात्मक ऊर्जा है कि सही परिस्थिति में वह उसी पौधे की तरह विकसित हो जाए जिससे वह उत्पन्न हुआ है तथा वह पौधा नए बीज उत्पन्न करेगा। जिस प्रकार एक बीज जिस पौधे से उत्पन्न हुआ है उसके समान होगा, उसी प्रकार कुशल कर्म हमें जीवन को अच्छे अस्तित्व में ले जाएंगे। अकुशल कर्म हमें असुर लोग, जंतु लोग, भटकते प्रेत लोग अथवा किसी नरक लोग के जीवन में ले जाएंगे। वनस्पति केवल एक भौतिक तथ्य है। वनस्पति में कोई इच्छाधारी चेतना नहीं होती, किंतु संवेदनशील प्राणी शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रक्रियाओं से रचित होते हैं। मानसिक कारक सबसे महत्वपूर्ण है। एक मानसिक कारक केवल एक ही नए पुनर्जन्म की चेतना को उत्पादित कर सकता है। यद्यपि किसी अस्तित्व में प्राणी के अनेक कुशल एवं अकुशल कर्म होते हैं, किंतु उनमें से एक ही पुनर्जन्म चेतना उत्पादित करेगा तथा उस जीवन को निर्धारित करेगा। कोई भी प्राणी किसी उच्चतर प्राणी द्वारा निर्मित नहीं होता। समुचित दृष्टि इस बात का एहसास है कि प्राणी जैसे मनुष्य, पशु इत्यादि अपने अतीत के जीवन के कर्मों के बीज के कारण नए अस्तित्व में आते हैं। भौतिक वस्तुओं का उत्तराधिकार केवल एक ही जीवन की अवधि के लिए हमारी संपदा कहा जा सकता है, किंतु मानसिक, मौखिक और शारीरिक कर्म हमारे सभी जन्मों में हमारा अनुसरण करेंगे। यही हमारी असली विरासत है। कुशल कर्म जैसे कुत्तों, सुअरों, मुर्गियों तथा अन्य पक्षियों को भोजन कराने के परिणाम स्वरूप अनेक सुखमय जन्म प्राप्त हो सकते हैं। शीलवान भिक्षुओं को भोजन कराने से असंख्य सुखमय अस्तित्व प्राप्त हो सकते हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी जानवर की जैसे मछली, पक्षी या सुअर की हत्या करता है तो उसका 1000 से अधिक भावी जन्मों में वध होगा। यदि हम एक नन्हा सा सेव का बीज बोते हैं तो उससे एक बड़ा वृक्ष पैदा हो सकता है जिसमें असंख्य सेव होंगे। उसी प्रकार कुशल कर्मों जैसे भिक्षादान, नैतिकता या ध्यान के बीज भविष्य के अस्तित्व में अच्छे परिणाम लाएंगे। प्राणी के कर्मों के प्रभाव अनेक जन्मों में सदैव उसका अनुसरण करते हैं तथा उपयुक्त समय पर अच्छे या बुरे परिणाम उपजाते हैं। इसी कारण बुद्ध ने कहा है कि हमारे कर्म ही हमारी विरासत में मिली संपत्ति है। सब्बे सत्ता कम दायदा। किसी पौधे के विकास के कई कारण होते हैं, बीज, पृथ्वी तथा जल। प्रमुख कारण बीज होता है, मिट्टी तथा जल द्वितीय कारण है। किसी मनुष्य के लिए अतीत के कुशल कर्म प्राथमिक कारण है, माता पिता माध्यमिक कारण है। इसी कारण बुद्ध ने कहा है कि हमारे कुशल एवं अकुशल कर्म ही हमारे अनेक जन्मों में भ्रमण के स्रोत हैं। सब्बे सत्ता कम्म योनि। हमारे माता पिता, भाई बहन, बेटे बेटियां, संबंधी, मित्र एवं गुरु हैं, जिनसे हमें प्रेम है तथा जिन पर हम निर्भर हैं, किंतु अल्प समय के लिए ही, जब तक हम जीवित हैं। दूसरी ओर हमारे कर्म निरंतर हमारे साथी रहेंगे। केवल हमारे कुशल कर्म ही हमें भविष्य के अस्तित्व में सुख एवं समृद्धि दे सकते हैं। इसी कारण बुद्ध ने कहा है कि केवल कर्म ही हमारे सच्चे मित्र एवं संबंधी हैं, जो प्राणियों का उनके सभी जन्मों में अनुसरण करते हैं। सब्बे सत्ता कम्म बंधु। हमारे वर्तमान जीवन में कुशल कर्म हमारी संकटों से सुरक्षा करते हैं तथा भविष्य के जन्मों में दुख से बचने के लिए हम इन्हीं पर भरोसा कर सकते हैं। प्रत्येक जन्म में हम इन्हीं कर्मों की शरण में होंगे, क्योंकि जो विधान इस ब्रह्मांड में लागू होता है वही विधान अन्य असंख्य ब्रह्मांडों में भी लागू होता है, चाहे हम बुद्ध की शिक्षा या बुद्ध शासन के विद्यमान होने के समय में हो या नहीं। यही कारण है कि बुद्ध ने केवल कर्म का उल्लेख किया है, त्रिरत्न का नहीं। जब उन्होंने कहा, प्राणी जब कहीं भी तमाम जन्मों में भटके, मात्र कर्म ही उनकी सच्ची शरण है। सब्बे सत्ता कम्मपति शरण। शरण अर्थात जिस पर निर्भर हो, या संकट तथा कठिनाई से बचाव के लिए आश्रय लें। इसका अर्थ मात्र श्रद्धांजलि अर्पित करना नहीं है। शरण, पाली में शरण शब्द का अर्थ है वह जो सहारा या संरक्षण दे सके, तथा हम अपने दैनिक जीवन में संरक्षण के लिए भौतिक सामग्रियों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण स्वरूप भोजन एवं जल दीर्घायु के आधार हैं। प्रभावी चिकित्सा के लिए औषधि एवं उचित आहार पर भरोसा किया जाता है। प्रशासन हमारी लुटेरों तथा अपराधियों से रक्षा करता है। एक भवन हमें शीत एवं वर्षा से बचाता है। पृथ्वी, अग्नि, जल तथा वायु सहारा है। वर्तमान समय में जबकि बुद्ध की शिक्षाएं अभी भी जीवित हैं, तीन और आश्रय हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। यही सही समझ या समुचित विवेक है कि मात्र कुशल एवं अकुशल कर्म ही प्राणी का एक जन्म से दूसरे जन्म में अनुसरण करते हैं। जीवन चक्र कर्मों के परिणाम तथा दुख से मुक्ति के विषय में 10 प्रकार की सम्यक दृष्टि, 10 वत्तुक सम्मादिट्ठि होती है। प्रथम सम्यक दृष्टि यह है कि एक अस्तित्व में परोपकार के साथ प्रदर्शित दानशीलता भावी अस्तित्वों में लाभकारी परिणाम देगी, अथि दिन्नम। द्वितीय सम्यक दृष्टि यह है कि प्राप्तकर्ताओं के पुण्य गुणों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान के साथ बड़े पैमाने पर की गई उदारता भविष्य के अस्तित्व में लाभकारी परिणाम लाती है, अथि यित्थम। तृतीय सम्यक दृष्टि यह है कि एक छोटे पैमाने पर दिया गया उपहार भी यदि शुभकामना के साथ दिया गया हो तो वह भविष्य के अस्तित्व में लाभकारी परिणाम देगा, अथि हुतम। चतुर्थ सम्यक दृष्टि यह है कि एक अस्तित्व में प्राणियों के प्रति किए गए क्रूर कर्मों के बुरे परिणाम भावी अस्तित्वों में होंगे तथा इस प्रकार के बुरे कृत्यों से बचने से लाभकारी परिणाम होंगे, अथि सुकत दुक्कतनम कम्मानम फलम विपाको। आप देखेंगे कि इस तथ्य पर अधिक बल दिया गया है कि अधिकांश परिणाम इसी अस्तित्व में नहीं अपितु भविष्य के जन्मों में होते हैं। यदि इसका विपरीत सत्य होता तो प्रत्येक व्यक्ति को यह स्पष्ट हो जाता कि कुशल एवं अकुशल कर्मों के परिणाम स्वरूप पारितोषिक तथा दुख अपरिहार्य है। पांचवी तथा छठी सम्यक दृष्टि है कि अपनी माता और अपने पिता के प्रति किए गए अच्छे एवं बुरे व्यवहारों के अच्छे और बुरे परिणाम भावी अस्तित्व में होंगे। हम देख सकते हैं कि अपने माता पिता के लिए हमारा कर्तव्य इतना महत्वपूर्ण है कि इसे अलग से दो बिंदुओं में बताया गया है, अथि माता अथि पिता। सातवां बिंदु वह सम्यक दृष्टि है कि वास्तव में अदृश्य योनि में जन्म लेने वाले भी प्राणी होते हैं जो मनुष्य की आंखों को दिखाई नहीं देते। अदृश्य योनियों में जन्म लेने वाले उपपातिक प्राणी वे हैं जिनका किसी माँ के गर्भाशय में गर्भाधान नहीं होता। अपने पूर्व कर्मों की शक्ति के कारण वे शरीर के पूरे विकसित अंगों के साथ पैदा होते हैं और अधिक विकसित नहीं होंगे, अपितु वैसे ही रहेंगे। अदृश्य जन्म के प्राणी मनुष्यों एवं पशुओं की योनियों के अतिरिक्त सभी लोकों में होते हैं। यहाँ तक कि जब मनुष्य उन प्राणियों के निकट होते हैं तब भी उनकी मानवीय आंखें उन्हें नहीं देख पाती। अथि सत्ता उपपति का जब वे अपना रूप प्रकट करते हैं केवल तभी वे मनुष्यों को दिखाई पड़ते हैं। आठवां तथा नौवां बिंदु वह सम्यक दृष्टि है कि यह लोक मानव लोक है, अथि अयम लोको। अन्य लोकों में चार निम्न लोक, देवलोक एवं ब्रह्मलोक सम्मिलित हैं, अथि परोलोको, तथा सभी दिशाओं में अनंत संख्या में ब्रह्मांड हैं। अंत में हम सम्यक दृष्टि के दसवें बिंदु पर आते हैं, वह यह है कि सर्वज्ञ बुद्ध, भिक्षु एवं ब्राह्मण। बुद्ध द्वारा इस शब्द का प्रयोग एक सदाचारी व्यक्ति के अर्थ में किया गया था, वास्तव में इस मानव लोक में होते हैं जो सच्चे धर्म की साधना करते हैं तथा मन की शांति पाते हैं एवं जो अपनी स्वयं की अंतर्दृष्टि के माध्यम से इस लोक तथा अन्य लोकों को ज्ञात तथा सिद्ध कर दूसरों को इसका ज्ञान प्रदान करते हैं। अथि लोके समन ब्राह्मणा, समग्गता, सम्मापतिपन्ना, ये इमं च लोकम, परम च लोकम, स्वयं आभिन्याय सच्चिकत्वा पवेद्यन्ति। चार आर्य सत्यों की सम्यक दृष्टि, दुख के सत्य, दुख के मूल के सत्य, दुख के विनाश के सत्य तथा दुख की समाप्ति के लिए अग्रणी मार्ग के सत्य की छेदक अंतर्दृष्टि है। इन्हें हम पूर्ववर्ती प्रवचनों में बता चुके हैं। सम्यक संकल्प अष्टांगिक आर्य मार्ग का अंतिम चरण सम्यक संकल्प, पाली में सम्मा संकल्पो है। हम इसे तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक निष्काम संकल्प, पाली में निखाम संकल्पो, अर्थात लोभ एवं कामुक इच्छाओं से मुक्त विचार तथा पुनर्जन्म के दौर से मुक्ति का लक्ष्य। दो अव्यापाद संकल्प, पाली में अव्यापाद संकल्पो, अर्थात सभी जीवित प्राणियों के कल्याण का विचार तथा तीन अविहिंसा संकल्प, अर्थात सभी जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा का विचार। अतः इसमें उत्तेजक कामुक इच्छाओं का त्याग तथा मेत्ता, दया, करुणा, मुदिता एवं धैर्य का विकास सम्मिलित है। प्रतीत समुत्पाद, आइए अब देखते हैं कि कर्म के साथ साथ कार्य कारण प्रभाव कैसे काम करते हैं। इस सिद्धांत को प्रतीत्य समुत्पाद, पाली में पटीच समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। यह बुद्ध की आधारभूत शिक्षाओं में से एक है। बुद्ध ने आदरणीय आनंद से कहा, आनंद प्रतीत्य समुत्पाद वास्तव में गहरा है तथा गहरा प्रतीत भी होता है। इसे न समझने के कारण, इसका मर्मज्ञ न हो पाने के कारण ये प्राणी धागे से बनी गेंद की तरह या मूझ घास की तरह उलझ गए हैं तथा दुखमय अस्तित्व से या पुनर्जन्म अथवा संसार के चक्र से बाहर निकलने में असमर्थ हैं। यही वह सिद्धांत है जिसका आदरणीय अस्य जी ने उल्लेख किया था, जब उपतिष्य, जिन्हें बाद में सारिपुत्र के नाम से जाना गया, ने उनसे अपने गुरु के सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए कहा था। जैसा कि हमने देखा है, इस सिद्धांत का उल्लेख करने वाली दो पंक्तियां ही सारिपुत्र को जागृति के पहले चरण के फल पद को प्राप्त कराने के लिए पर्याप्त थी। ये धम्मा हेतु प्रभवा तेसम हेतुम तथागतो आह तेसम च यो निरोधो एवं वादी महासमण। तथागत ने सभी धर्मों के कारणों की तथा उनके निरोध की व्याख्या कर दी है। यही महाश्रमण का सिद्धांत है। यह कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जो बुद्ध द्वारा आविष्कृत हो या बड़ी चतुराई से रचित कोई दार्शनिक प्रणाली हो जिसे संशोधित किया जा सके। यह किसी दैवी शक्ति का आविष्कार नहीं है। प्रतीत्य समुत्पाद सभी तथ्यों या धर्मों अर्थात संखित अवस्थाओं की उत्पत्ति एवं उनकी समाप्ति का परम सत्य है। ऐसा होता ही रहता है चाहे कोई बुद्ध हो या न हो। इमस्मिम सति इदम होति, इमस्सुपदा इदम उपज्यति, इमस्मिम असति इदम न होति, इमस्सा निरोधो इदम निरुज्यति। इसके होने से यह होता है, इसके उत्पन्न होने से यह उत्पन्न होता है, इसके न होने से यह नहीं होता, इसकी समाप्ति के साथ यह समाप्त हो जाता है। प्रतीत समुत्पाद का यह परम सत्य बुद्ध द्वारा उनकी जागृति के माध्यम से आविष्कृत हुआ था। अपनी जागृति के पश्चात वे गया में बोध वृक्ष के आधार पर मुक्ति के परम आनंद का अनुभव करते हुए बैठे रहे। जब 7 दिन समाप्त हो गए तो वे अपने गहरे ध्यान से बाहर निकले तथा रात्रि के पहले पहर में उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद के उत्पन्न होने वाले पहलू अनुलोम पर विचार किया। इसके होने से यह होता है, इसके उत्पन्न होने से यह उत्पन्न होता है। मध्य पहर में उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद पर समाप्ति के दृष्टिकोण प्रतिलोम से विचार किया। इसके न होने से यह नहीं होता, इसकी समाप्ति के साथ यह समाप्त हो जाता है। तथा रात्रि के अंतिम पहर में बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद के दोनों उत्पन्न होने वाले एवं समाप्त होने वाले पहलुओं को परिलक्षित किया। यह दुख का मूल है, दुख का समुदय है, यह दुख का अंत है। प्रतीत्य समुत्पाद के 11 चरण इस प्रकार हैं: अविद्या पर निर्भर कर संस्कार, पाली में संखार उत्पन्न होते हैं, संखार पर निर्भर कर चेतना या विज्ञान, पाली में विज्ञान उत्पन्न होते हैं, चेतना पर निर्भर कर मन शरीर अर्थात नाम रूप उत्पन्न होते हैं, नाम रूप पर निर्भर कर खडायतन, पाली में सलायतन अर्थात 6 ज्ञानेंद्रियों के आधार उत्पन्न होते हैं, सदायतन पर निर्भर कर स्पर्श, पाली में फस उत्पन्न होते हैं, स्पर्श पर निर्भर कर वेदना उत्पन्न होती है, वेदना पर निर्भर कर तृष्णा, पाली में तणहा उत्पन्न होती है, तृष्णा पर निर्भर कर आसक्ति या उपादान उत्पन्न होता है, उपादान पर निर्भर कर भव उत्पन्न होता है। वर्तमान अस्तित्व में नैतिक एवं अनैतिक कर्मों पर निर्भर कर पुनर्जन्म की प्रक्रिया उत्पन्न होती है, पुनर्जन्म की प्रक्रिया पर निर्भर कर बुढ़ापा, मृत्यु, दुख, विलाप, पीड़ा, शोक तथा हताशा उत्पन्न होती है। इस प्रकार दुख का संपूर्ण भंडार उत्पन्न होता है। समाप्ति की दृष्टि से प्रतीत्य समुत्पाद की वही 11 कड़ियां हैं। जब इनमें से कोई एक कड़ी टूटती है तो अगली कड़ी भी टूट जाती है। अविद्या की पूरी समाप्ति के माध्यम से संखार समाप्त होते हैं। संखारों की समाप्ति के माध्यम से चेतना समाप्त होती है, इत्यादि इत्यादि, दुख के समूचे भंडार की समाप्ति तक। किंतु अविद्या, पाली में अविद्या, को पहली शुरुआत नहीं समझना चाहिए। प्रथम प्रारंभ या आदि की कल्पना असंभव है। दुख के मूल को मात्र एक सतत प्रक्रिया के रूप में जाना जा सकता है, जिसे हम तभी समझ सकते हैं जब हम इसके कार्य करते समय इसका अवलोकन करें। इस प्रक्रिया की आदि का कोई भी एक बुद्ध भी नहीं पता लगा सकते। आइए अब हम विभिन्न चरणों को कुछ और विस्तार से देखते हैं। पिछले जन्मों में हमने मन, वचन तथा शरीर से अच्छे एवं बुरे कर्म किए, क्योंकि हम अनुबंधित या संखित दशाओं की असली सच्चाई से अनभिज्ञ थे। अतः हमारी अविद्या, पाली में अविद्या, या अज्ञान से ये मानसिक शक्तियाँ या संखार उत्पन्न हुए, जिन्होंने हमारे वर्तमान अस्तित्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया। हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण हमारे वर्तमान जीवन में चेतना या विज्ञान है, जो मन, शरीर या नाम रूप प्रक्रिया, जिसे हम मैं मेरा कहते हैं, का निरंतर आलंबन है। इस मन, शरीर या नाम रूप प्रक्रिया में छह ज्ञानेन्द्रियां सदायतन, पाली में सदायतन अर्थात दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद, स्पर्श एवं विचार तथा कल्पना है। इनसे उन विषयों से संपर्क या स्पर्श, पाली में फस, संभव होता है जो इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं। इस स्पर्श से अनुभूतियां या संवेदनाएं, पाली में वेदना, उत्पन्न होंगी। ये वेदनाएं प्रिय, अप्रिय या तटस्थ होंगी, जिनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया होगी, तथा इस प्रकार लालसा या तृष्णा, पाली में तृणा, उदय होगी। हमारी लालसा होगी कि प्रिय वेदना बनी रहे, अप्रिय अनुभूतियों से हमारी छुटकारा पाने की लालसा होगी। अतः इस लालसा से आसक्ति या उपादान होगा। हमारी आसक्ति का परिणाम होगा भाव अर्थात अनुबंधित अस्तित्व, तथा हम अपने नए अस्तित्व में असंख्य कर्म करेंगे जो अच्छे या बुरे होंगे। इस प्रकार हम नए जन्म में जाएंगे, जाति, जो पुनः केवल बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, विलाप, दुख, कुंठा एवं संताप लाएगा। जरा, मरणम, शोक, परिदेव, दुख, दोमनस्य, उपायास। कार्य कारण का यही दुष्चक्र है, तथा इस पूरी प्रक्रिया के लिए हम ही उत्तरदायी हैं। हमारी लालसा तथा आसक्ति ही हमें अच्छे और बुरे कर्मों की ओर ले जाती है, जो हमें दुख की पूरी प्रक्रिया से जोड़ेंगे। किंतु क्या यह सब समाप्त किया जा सकता है? इस श्रृंखला में यदि कोई भी एक कड़ी टूट जाए तो सारी प्रक्रिया बंद हो जाएगी और हम केवल वही करने में सक्षम होने के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। इस श्रृंखला में एक कड़ी ऐसी है जो विशेष रूप से गृहस्थ जनों के काम करने के लिए उपयुक्त है। वह है वेदना तथा वेदना के प्रति प्रतिक्रिया से उत्पन्न तृष्णा के बीच की कड़ी। जब हम अपनी आंखें बंद कर बैठते हैं तथा वेदनाओं का अनुभव करते हैं, तो यह पूरी प्रक्रिया प्रतिक्षण असंख्य बार होती है। प्रत्येक वेदना अतीत में अविद्या के कारण किए गए कर्म का परिणाम है। यदि हम अनित्यता अर्थात वेदनाओं में परिवर्तनशीलता के बोध में तल्लीन हो सकें, तो हम स्वतः ऐसा संतुलित दृष्टिकोण या समभाव विकसित कर सकेंगे जो हमें एक दिन उस कड़ी को काटने में सक्षम करेगा, जो कड़ी हमें अगले चरण की ओर ले जाती है। सामान्यतः जो लालसा हम उदय होने देते हैं, उसे काटने की दिशा में हम काम करेंगे। जब तक हम मुक्ति न प्राप्त कर लें, तब तक हम इस कड़ी को तोड़ने में समर्थ नहीं हो सकते, तथा इसके लिए प्रचुर तैयारी करनी पड़ती है। प्रतीत्य समुत्पाद, पाली में पटीच समुपाद, के विषय में और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, किंतु मैं सोचता हूँ कि इतना ही आपको यह एहसास कराने में सहायक होगा कि अपनी साधना आप क्यों इस प्रकार से कर रहे हैं तथा आपकी साधना का महत्व क्या है। यदि आप वेदनाओं के स्वभाव अर्थात नश्वरता या अनित्यता का बोध कर सकते हैं तो आप दुख की उत्पत्ति का सत्य समझ जाएंगे, आपकी वेदना के प्रति लालसा छूट जाएगी तथा आप दुख निरोध का सत्य साकार करेंगे, अविद्या समाप्त हो जाएगी तथा प्रतीत्य समुत्पाद की पूरी प्रक्रिया का अंत हो जाएगा। प्रतीत्य समुत्पाद का अनुलोमतः अर्थात उदय के अनुसार विचार करने के पश्चात बुद्ध के मुख से उदान के ये वचन निकले, यदा हवे पातु भवन्ति धम्मा आतापिनो जायतो ब्राह्मणस्य अथस्य कंखा वपयन्ति सब्बा यतो पजानाति स हेतु धम्मन्। जब तपस्वी ध्यानी ब्राह्मण के समक्ष धम्म प्रकट हो जाते हैं तो उसकी सारी शंकाएं मिट जाती हैं, क्योंकि वह हेतु सहित धम्म को प्रज्ञापूर्वक जान लेता है। प्रतीत्य समुत्पाद का प्रतिलोमतः अर्थात निरोध के अनुसार विचार करने के पश्चात बुद्ध के मुख से उदान के ये वचन निकले, यदा हवे पातु भवन्ति धम्मा आतापिनो जायतो ब्राह्मणस्य अथस्य कंखा वपयन्ति सब्बा यतो खयम् पच्यानम् अवेदीति। जब तपस्वी ध्यानी ब्राह्मण के समक्ष धम्म प्रकट हो जाते हैं तो उसकी सारी शंकाएं मिट जाती हैं, क्योंकि वह प्रत्यय के क्षय को जान लेता है अर्थात उसे यह बोध हो जाता है कि कैसे कारणों का अंत होता है। प्रतीत्य समुत्पाद का अनुलोमता एवं प्रतिलोमता दोनों रूप में विचार करने के पश्चात बुद्ध के मुख से उदान के ये वचन निकले, यदा हवे पातु भवन्ति धम्मा आतापिनो जायतो ब्राह्मणस्य विधूपयम् तिष्ठति मारसेनम् सूर्यो व उभासय मंत लिखन्ति। जब तपस्वी ध्यानी ब्राह्मण के समक्ष धर्म प्रकट हो जाते हैं तो उसकी सारी शंकाएं मिट जाती हैं, और जिस प्रकार अंधकार को विदीर्ण कर सूर्य आकाश को प्रकाशित करता है उसी प्रकार वह मार सैनिकों को छिन्न भिन्न कर डालता है तथा पूर्ण जागृति की प्राप्ति के बाद बुद्ध के उद्घोष के प्रथम शब्द ये थे, अनेक जाति संसारम संधा विषम अनिबिषम गहकारम गवेशम तो दुखा जाति पुनः पुनम। इस घर को बनाने वाले की खोज में मैं बिना रुके अनेक जन्मों तक भव संसरण करता रहा, किंतु बार बार दुख में जन्म ही हाथ लगे। गहकारक दिठोसी पुन गेहम न काहसी सब्बाते फसुका भग्गा गहकूटम विसंखतम विसंखार गतम चित्तम तणहानम खय मज्जगा। ओ घर बनाने वाले, अब तू देख लिया गया है, अब फिर तू नया घर नहीं बना सकता, तेरी सारी कड़ियां टूट गई हैं तथा घर का शिखर भी विश्रृंखलित हो गया है, चित्त पूरी तरह संस्कार रहित हो गया है और तृष्णाओं का क्षय अर्थात निर्वाण प्राप्त हो गया है। धम्मपद गाथा 153 से 154। आज संध्या केवल इतना ही। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु। अब आप 7:30 बजे सायंकाल की सामूहिक साधना प्रारंभ होने तक विश्राम कर सकते हैं।